मेरे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे हिमालय के जो ग्लेशियर के पिघलने की बात की जाती है, उस पर अभी जो एक अध्ययन आया है, उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन आइए पहले एक दो जो दूसरी खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी अभी यूरोप की यात्रा पर हैं, और यदि आप सिविल सर्विस की अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपकी नज़र उनके इस दौरे पर होगी। आपको ध्यान होगा कि पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि अब जो भारत है यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंधों को बहुत घनिष्ठ करना चाह रहा है। नो डाउट कि रशिया से हमारे संबंध अच्छे हैं, देख रहे हैं आप कि यूक्रेन युद्ध के दौरान हम रशिया के विरोध में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अमेरिका से हमारे संबंध बहुत बेहतर हो गए हैं, तो अब हमारा जो ध्यान है वो यूरोपीय देशों पर है, है ना। अफ्रीका महाद्वीप से हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, डेफिनेटली यहाँ भी हमारे संबंध बेहतर किए जा रहे हैं, पहले से भी हैं। लेकिन खासकर अभी कुछ समय से आपने महसूस किया होगा कि हमारा फोकस यूरोपीय देश हो गए हैं। तो इसी के तहत प्रधानमंत्री की हमारी यात्रा है। यहां मैं आपको कुछ बातें स्पेशली बताना चाहूंगा। जब आप दूरदर्शन की न्यूज सुन रहे होंगे या अखबार पढ़ रहे होंगे, तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जिन देशों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, मैं फ्रांस और जर्मनी की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से बातचीत की, दूरदर्शन पर बहुत विस्तार के साथ इसे दिखाया गया। आज वे और भी जो चार देश के प्रमुख हैं उनसे बातचीत करेंगे, और पांचों के साथ संयुक्त बैठक होगी। जो पांच देश हो जाएंगे टोटल, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, इन पांचों देशों के साथ संयुक्त बातचीत हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। इन पांचों देशों के लिए अखबारों में जिस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है वह है नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज, सामान्य तौर पर इन्हें स्कैंडिनेवियाई देश भी कहा जाता है, लेकिन अभी जो शब्द चल रहा है वो है नॉर्डिक कंट्रीज। तो ये नॉर्डिक शब्द क्या है, क्या आपने इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश की? और अगर नहीं की हो, खैर मैं तो बताने जा ही रहा हूं, लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि जहां भी इस तरह की कोई बाधा आपको महसूस हो, आपको बकायदे चाहिए कि आप उसे समझें कि नॉर्डिक क्यों कहा गया है, स्कैंडिनेवियाई देश क्यों कहे गए हैं। इससे आप एम्पावर्ड होंगे, भले सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे आपकी जो समझ है वो विकसित होगी। नॉर्डिक बेसिकली ये जो यूरोप का वो जो हिस्सा है, देखिए कि वो किस हिस्से पर प्रधानमंत्री गए हैं, मैं अभी यहां नहीं बता रहा हूं। आपको चाहिए कि आप एटलस खोलें और देखें कि ये देश कहां पर स्थित है। तो यूरोप के ये जो पांच देश हैं, और साथ ही साथ तीन और देश हैं जो अपने आप में ऑटोनोमी है उनके पास, स्वायत्त है, लेकिन इनसे वो जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर ये जो तीन देश है, पांच के नाम मैं बता चुका हूं, तीन के नाम और बताना चाहूंगा। जैसे एक है फरो आइलैंड, दूसरा है ग्रीनलैंड। तो ये जो दोनों है, फरो आइलैंड और ग्रीनलैंड, ये डेनमार्क से कनेक्टेड है। एक और है एलंड, ये फिनलैंड से कनेक्टेड है। तो इस तरह से टोटल आठ देश हो गए, पांच बिल्कुल स्वतंत्र हैं, तीन जो हैं स्वायत्त हैं, लेकिन इन पांच देशों में से दो देशों के साथ कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली जो नॉर्डिक शब्द है ये नस्ल को इंडिकेट करता है, नस्ल। ये जो नॉर्डिक लोग होते हैं, ये स्कैंडिनेवियाई देशों में ही मुख्य रूप से रहते हैं, इनकी विशेषता ये होती है कि ये लंबे होते हैं, छरहरे होते हैं, लंबे पतले होते हैं। जो इनकी आंखें होती हैं वो नीली होती हैं, बालों का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, सिर भी इनका जो है थोड़ा सा लंबा मिलेगा, और इनकी जो स्किन है वो बड़ी पारदर्शी सी होती है, चमकीली होती है आप कह सकते हैं। तो ये इस तरह की नस्ल है। तो इस तरह के नस्ल के लोगों को नॉर्डिक लोग कहते हैं। तो चूंकि इन पांच देशों में और तीन जो दूसरे देश हैं इस तरह के नस्ल के लोग पाए जाते हैं, रहते हैं, तो इसीलिए इन्हें नॉर्डिक कंट्री कहा जाता है। दोस्तों, कल जो बातचीत हुई डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ, बकायदे आपने न्यूज में सुना होगा, आपको सुनना ही चाहिए, अखबारों में भी आप पढ़ेंगे, तो इंपॉर्टेंट केवल दो तीन बातें। पहला तो ये है कि खासकर ये जो देश हैं, जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, ये कुछ मामलों में बहुत बेहतर हैं। एक चर्चा मैं कर चुका था कि जब भी हैप्पी इंडेक्स की बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात होगी, तो हमेशा ये सब टॉप पर रहते हैं। बहुत अच्छे देश हैं, रहने के लायक बहुत प्यारे देश हैं। तो इनके साथ जो भारत की जो ज़्यादातर जो भागीदारी होती है, अभी जो हो रही है वो ग्रीन रिवोल्यूशन को लेकर के हो रही है, आप कह लीजिए कि हरित भागीदारी को लेकर के, कि कैसे हम अपने यहाँ जो ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं उसमें हम पार्टनरशिप निभा सकते हैं। और बकायदे कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि खासकर जो डेनमार्क है, जो भारत में श्वेत क्रांति हुई थी जिसे हम दुग्ध क्रांति कहते हैं, उसमें तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये जो देश है ये खासकर डेयरी उद्योग के मामले में तो अद्भुत देश है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। डेनमार्क के साथ हमारी जो सबसे बड़ी साझेदारी है उसका नाम है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आप नाम देखिए, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये उनके साथ हमारे संबंधों को नाम दिया गया है। और लगभग 200 डेनिश कंपनियां हैं वे भारत में काम कर रही हैं, 200 डेनिश कंपनी, हालांकि ये बहुत ही छोटा सा देश है। दोस्तों, अगर कल आपने प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुना हो, जो वहाँ हमारे भारतीय मूल के लोग रहते हैं उनको जब वो संबोधित कर रहे थे, उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, तो उसमें उन्होंने 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, वो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, ये आपके आंसर राइटिंग में काम आ सकते हैं। पहली बात देखिए उन्होंने कही, वो ये है कि जब भारत सशक्त होता है, भारत शक्तिशाली होता है, तो एक प्रकार से विश्व सशक्त होता है। और बहुत सही बात कही, क्योंकि आप जानते हैं कि विश्व की 16-17% पॉपुलेशन भारत में रहती है, तो भारत के सशक्त होने का मतलब है विश्व का सशक्त होना। और इस मायने में आप कह सकते हैं कि चीन में तो हमारे से ज्यादा आबादी रहती है, लेकिन नहीं, जो चीन की जो प्रणाली है, शासन की प्रणाली है, वो कम्युनिस्ट प्रणाली है, साम्यवादी प्रणाली है, लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रणाली है। और हम वसुधैव कुटुंबकम की बात को लेकर के चलते हैं, तो सीधी सी बात है कि भारत का सशक्त होना विश्व का सशक्त होना है। बहुत अच्छी लाइन उन्होंने कही। इसके बाद उन्होंने दूसरी बात कही जो पर्यावरण से जुड़ी हुई है, कि भारत ने कभी भी विश्व के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमारी पहले से ये फिलॉसफी रही है कि पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर हमें चलना है। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हमने कभी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया है। और वहां तो प्राइम मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा कि 2070 तक हम जो कार्बन का उत्सर्जन है वो शून्य करने के लिए प्रयत्नरत हैं। फिर उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही जिसे आप संस्कृति के प्रश्नों में इस्तेमाल कर सकते हैं जब उत्तर लिखेंगे, तो वो ये कि चाहे किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग हों, चाहे किसी राज्य में रहने वाले लोग हों, उसको उन्होंने इंडिकेट किया थालियों से, कि हमारी थालियां बदलती रहती हैं, यानी कि हमारे जो भोजन है वो बदलते रहते हैं, लेकिन जब हम किसी को भोजन कराते हैं तो भोजन कराने का जो आग्रह होता है कि नहीं नहीं आप लीजिए, नहीं थोड़ा सा और लीजिए, यह नहीं बदलता। यह भारतीय एकता है, यह विभिन्नता में एकता के रूप में इन्होंने जो बात कही हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो बहुत नई और बड़ी प्यारी बात है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फिर उन्होंने वहां के लोगों से आग्रह किया जो हमारे भारतीय मूल के हैं, कि भई आप अपने कम से कम 5 परिचितों को, 5 दोस्तों को भारत भेजिए टूरिज्म के लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर खासकर संघ के प्रचारक के रूप में विदेशों में जाते थे, तब भी वो लगातार यही बात कहते थे कि अपने 5 परिचितों को आप भारत भेजिए, और इससे हमारी जो टूरिज्म की जो इकोनॉमी है, आप सोचिए कि वो कितनी मजबूत होगी। तो यह भी उन्होंने बहुत अच्छी और बड़ी प्यारी बातें कही हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ सीधे सीधे आज के मुख्य विषय पर, वह है हिमालय के ग्लेशियर को लेकर। जनरली आप देखते हैं कि हिमालय के ग्लेशियर के बारे में यही कहा जाता है कि हमारे ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, और एक दिन ऐसा होगा जबकि गंगा नदी सूख जाएगी। और इंस्टीट्यूशंस ये बातें कहते हैं, जैसे 2007 में जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, 2007 में उन्होंने ये दावा किया कि 2035 तक जो हमारे हिमालय के ग्लेशियर हैं वो गायब हो सकते हैं 2035 तक। हम 2022 में हैं, सोच के देखिए। बाकायदे इकोनॉमिस्ट ने 2019 में एक रिपोर्ट दी और उसमें कहा कि जो गंगा का जो 70% प्रवाह है, लगभग 70% वो ग्लेशियर के पानी के पिघलने से आता है, यानी कि ग्लेशियर के पिघलने से गंगा में पानी आता है। इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन अभी जो एक अध्ययन हुआ है उसमें उन्होंने ये सारे अध्ययनों को खारिज किया है, इन सारी बातों को खारिज किया है। और ये जो अध्ययन करने वाले हैं, चूंकि ये बात अलग से कही जा रही है तो आपको रेफरेंस मालूम होना चाहिए कि ये बात कौन कह रहे हैं। तो जो कहने वाले हैं वो हैं एक कैटो इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो हैं, स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर। मैं नाम रिपीट कर रहा हूं, कैटो इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर। और दूसरे हैं ग्लेशियोलॉजिस्ट, अब ये तो ग्लेशियर के एक्सपर्ट ही हैं, विजय के रैना ग्लेशियर विशेषज्ञ हैं। इन्होंने जो अध्ययन किया और उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के ग्लेशियर नहीं पिघल रहे हैं। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जब हिमयुग समाप्त हुआ तो उस हिमयुग की समाप्ति के बाद से अभी लगभग 11,700 साल हो गए हैं और तब से ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और उन्होंने बकायदे इसरो के जो ताजा उपग्रह से जो चित्र मिले हैं इसरो के द्वारा, इसरो के अध्ययन से यह बात प्रमाणित हो गई है कि 2002 से 2011 के बीच हिमालय के जो अधिकांश ग्लेशियर थे वो ज्यों के त्यों रहे हैं, स्थिर रहे हैं, वे पिघले नहीं है। कुछ ही ग्लेशियर हैं जो डेफिनेटली सिकुड़े हैं। इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी जहां से निकलती है, देखिए उसका नाम है गोमुख, गोमुख एक ग्लेशियर है, मैं वहां गया हुआ हूं। जब हम लोग सिविल सर्विस के दौरान ट्रैकिंग पर थे, ट्रेनिंग के दौरान, तो हम लोग गोमुख तक गए थे। तो जो गोमुख है वो जो ग्लेशियर है वो पीछे हट रही है, हट रही है और इसके हटने की जो रफ्तार है वो है 33 फीट पर ईयर, 33 फीट वो पीछे हट रही है। और उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि यदि इसी रफ्तार से यह गोमुख पीछे हटती रही, ग्लेशियर आप कह सकते हैं, पीछे हटता रहा तो इसे खत्म होने में 3,000 साल लगेंगे, 3,000 साल, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। उन्होंने फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, वो ये कही कि ये जो पूरा का पूरा जो गंगा का बेसिन है जो लगभग 8.60 लाख वर्ग किलोमीटर है, सोचिए 9.25 लाख वर्ग किलोमीटर मोटे तौर पर कह सकते हैं, ये जो गंगा का बेसिन है या बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, तो जब बर्फबारी होती है तो ग्लेशियर इससे ढक जाते हैं, ग्लेशियर ढक गए और जब वसंत का मौसम आया, जब गर्मी हुई, तो फिर यही जो ढके हुए बर्फ है ये बकायदे पिघल पिघल करके गंगा नदी में आती है। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गंगा नदी में जो जल आता है वो ग्लेशियर के जरिए केवल 1% है। जब आप देखिए कि इससे पहले रिपोर्ट में क्या कहा गया, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में, कि 70% गंगा का पानी ग्लेशियर के पिघलने से आता है, और ताजे अध्ययन में कहा जा रहा है कि नहीं, केवल 1% पानी गंगा के ग्लेशियर के पिघलने से आता है। ये कह रहे हैं कि केवल 1% पानी जो गंगा का है वो वहां के ग्लेशियर्स के पिघलने से आता है। तो दोस्तों, ये अभी तक जो बातें की जा रही थी उनके विरोध में खड़ा एक तर्क है, इसीलिए जब भी आपको अपनी बात रखनी हो तो आप बकायदे प्रामाणिक तौर पर ही रखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन चूंकि ये लेटेस्ट स्टडी है इसलिए आपको जानना ही चाहिए, और ये आपके भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे मालूम पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार।